तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर भूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। कहे तेरा दिल तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला।
ओम शांति। आज के इस सुबह की भट्टी की शुरुआत हम एक छोटी सी आत्म कहानी से करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी लिखी है जिसमें उसने लिखा है कि मेरे जीवन के 5 अध्याय 5 चैप्टर्स है। उसने लिखा कि पहला चैप्टर है कि मैं एक रास्ते से जा रहा था और अंधेरा था, सामने एक गड्ढा था और मुझे पता नहीं था और उस गड्ढे में मैं गिर गया। और जब उस गड्ढे में गिरा तो मैंने कहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, और मैं उस गड्ढे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। तो उस विचारक ने, उस दार्शनिक ने, उस फिलोसोफर ने यह लिखा कि ये मेरे जीवन का सबसे पहला अध्याय है। मेरे जीवन का दूसरा अध्याय, 2nd चैप्टर, मैं उसी रास्ते से फिर से जा रहा था, अंधेरा था और वो गड्ढा वहां था, ये मुझे पता था, परंतु मैंने ये दिखाया, अपने आप को समझाया कि वहां कोई गड्ढा नहीं है और मैं दोबारा उसी गड्ढे में गिर गया। इस बार भी मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, पर इस बार भी मुझे निकलने में बहुत समय लगा। पहली बार जब गिरा था तो निकल ही नहीं पाया हमेशा के लिए, परंतु दूसरी बार मैं निकल सका, परंतु बहुत समय लगा। उसने लिखा है मेरे जीवन का तीसरा अध्याय ये है कि मैं उसी अंधेरी राह से जा रहा था, वो गड्ढा वही था और गड्ढा बहुत गहरा था। मैं ये जानता था कि गड्ढा वहां पर है और मैंने उस गड्ढे को देखा भी और फिर से मैं उस गड्ढे में गिर गया। शायद आदत हो गई थी, परंतु इस बार मैंने आपसे कहा, अपने आप से चिल्ला कर कहा कि गलती मेरी है और मैं उस गड्ढे से बाहर निकल गया। उस व्यक्ति ने लिखा है कि मेरे जीवन का चौथा अध्याय ये है कि मैं उसी अंधियारी राह से जा रहा था, वो गड्ढा वही पर था, गड्ढा बहुत गहरा था, परंतु मैं बाजू से निकल गया, मैं इस बार उस गड्ढे में नहीं गिरा। और उस व्यक्ति ने लिखा मेरे जीवन का पांचवा अध्याय है कि मैंने देखा वो राह है, वो अंधियारा है, वो गड्ढा है, परंतु मैंने इस बार अपनी राह ही बदल दी। तो उसने कहा कि ये मेरे जीवन की कहानी है, ये मेरी आत्म कहानी है जिसमें ये पांच अध्याय है। पहली बार मुझे पता नहीं था मैं गिर गया और मैंने कहा मेरी गलती नहीं है। दूसरी बार मुझे पता था परंतु मैंने दिखाया, समझाया अपने आप को कि कोई गड्ढा नहीं है, पर मैं फिर गिर गया। फिर मैंने कहा कि मेरी गलती नहीं है और मुझे बहुत समय लगा निकलने को। तीसरी बार मुझे पता था, मैंने देखा भी कि गड्ढा है, परंतु आदत ऐसी पड़ गई थी गिरने की कि मैं गिर गया। परंतु इस बार मैंने स्वीकार किया कि गलती मेरी है और मैं बाहर निकल गया। और लास्ट चौथा, मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। चौथी बार मैं गड्ढे में नहीं गिरा। और पांचवा अध्याय वो कहता है, जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, वो ये है कि मैं उस मार्ग पे गया ही नहीं, मैंने अपनी दिशा ही बदल दी। तो ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की है। ब्राह्मण तो हम बन गए, परंतु ब्राह्मण बनने के बाद शायद हम में से ऐसे बहुत है, इन्होंने बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां की है, और वो गलतियां ऐसी है कि हमें पता भी था वो करते समय कि ये नहीं करना है, फिर भी वो हमारे द्वारा हुई, जैसे कि वो आदत बन गई थी। पहली दो स्टेप तो शायद हमने क्रॉस कर ली, ये कहना कि मेरी गलती है ही नहीं, परंतु जो तीसरी स्टेप है उसमें भी गिरना तो है, परंतु ये एहसास है कि गलती मुझसे हुई है, और ये अनुभूति ही हमें उस गलती से बाहर निकालती है। और हर व्यक्ति ये कितनी गहराई से महसूस करता है, कितनी सूक्ष्मता से ये महसूस करता है, इस पर सब कुछ निर्भर है। आज सुबह की मुरली में, अव्यक्त वाणी में, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, उदाहरण दिया है सीमेंट का और रेत का। बाबा ने कहा कि रेत क्या है, जब तुम अपनी बिल्डिंग, अपनी इमारत बनाते बनाते सीमेंट में रेत अगर मिक्स कर दो तो वो बिल्डिंग बहुत कमजोर रहेगी, और रेत है देख लेंगे, दूसरे भी कर रहे हैं, हो जाएगा। ये जो भाषा है, बाबा ने कहा ये दृढ़ संकल्प की भाषा नहीं है, ये क्या है, रेत है जो उस सीमेंट में मिक्स हो रही है। तो जैसे कि आज सुबह की वाणी में बाबा ने कहा, ये तुम्हारा नया जन्म है, ये तुम्हारा नया जीवन है, इसीलिए इस नए जीवन में तुम्हारा कर्म धर्म नया होना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा हर संकल्प, हर संस्कार और हर संबंध भी नया होना चाहिए। बाबा ने कहा जो जो पुरानापन है उसको समाप्त करो, जब तक पुरानापन समाप्त नहीं होगा नए की स्थापना नहीं होगी, और बाबा नए युग की रचना करने आए हैं, हम नए युग के अधिकारी बच्चे हैं, इसलिए हमारे इस ब्राह्मण जीवन में, बाबा ने सुबह की वाणी में कहा कि चार बातों की महसूसता हर ब्राह्मण बच्चे को होती है, कि ब्राह्मण जीवन की जो श्रेष्ठता है उतनी श्रेष्ठता मेरे में नहीं है, ब्राह्मण जीवन में जो विशेषताओं की अनुभूतियां होनी चाहिए, अनुभूतियों सर्व प्राप्तियों की जो अनुभूतियों की जो विशेषता है वो नहीं है, तीसरा फरिश्तेपन की जो अतीन्द्रिय सुख है फरिश्तेपन का वो अनुभव नहीं हो रहा है, और चौथा डबल लाइट स्टेज। तो बाबा ने कहा कि अगर ब्राह्मण बन गए, नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर भी उसके बाद में भी ये चार चीजें हो रही है, तो जरूर वो पुरानापन साथ चल रहा है, जरूर हमारे अंदर वो नयापन, वो नवीनता अब तक नहीं आई है। तो वर्तमान समय की मांग है नयापन, नवीनता, हर संकल्प नया हो, हर संस्कार नया हो, हर संबंध नया हो, हर कर्म नया हो, हर धर्म नया हो। तो जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, सबसे पहले भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होती थी 1935 की, उसके बाद में उसको बदला गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ 26 जनवरी के दिन एक दूसरी भी चीज घोषणा हुई थी और वो थी पूर्ण स्वराज्य की। तो पूर्ण स्वराज्य अर्थात संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी स्थिति, पूर्ण स्वराज्य अर्थात अपनी इंद्रियों पर स्वयं का संयम, संपूर्ण स्वराज्य अर्थात हम खुद के मालिक हो, कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे, कोई भी कर्मेंद्रिया ऐसा पाप हमसे ना करा दे कि वो होने के बाद फिर एक पश्चाताप का भाव रह जाए, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस रह जाए कि हमने वो नहीं किया जो करना चाहिए था और कुछ और ही कर दिया। आज बाबा ने कहा दो तुम्हारे यादगार है भक्ति मार्ग में, एक है स्वस्तिक और दूसरा है गणेश। तो नएपन का श्री गणेश करना है, नए पुरुषार्थ का श्री गणेश करना है और स्वस्तिक अर्थात स्वस्थिति में स्थित रहना। और एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य आज की मुरली में है, यदि संकल्प शक्तिशाली है तो तुम्हारे संकल्प के साथ साथ ही सफलता चलेगी। संकल्प और सफलता दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आज हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है संतुलन, वो है बैलेंस। हमें बताया गया कि आपकी जो तीव्र पुरुषार्थ की भट्टी है उसका जो थीम है वो है बैलेंस। तो आज का विषय भी ऐसा ही है, समय के बहाव में टूटता संतुलन का पुल, समय के बहाव में टूट रहा है, क्या टूट रहा है, संतुलन का पुल। तो समय का बहाव क्या है और कौन सा ये पुल है जो टूट रहा है। कई बार हमने मुरलियों में सुना है कि जहां ब्लेसिंग है वहां स्वतः ही, जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग है और जहां ब्लेसिंग है वहां ब्लिसफुल लाइफ है। कई मुरलियों में बाबा ने ये चीजें हमसे कही है। तो आज हम कुछ चर्चा ब्राह्मण जीवन के बैलेंस के विषय में करेंगे। बैलेंस जब जीवन में होता है तो अपने आप जीवन में स्थिरता आती है। जैसे दिखाया है, एक व्यक्ति है जिसके साथ उसकी छोटी बेटी है और दोनों कलाबाज है, नट है, एक्रोबैट, और वो कला प्रदर्शन करते हैं सड़कों पर, सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, इस तरह उनका गुजारा चलता है। वो क्या करते हैं कि वो जो पिता है वो अपने सिर पर एक डंडा रखता है और डंडे के ऊपर उसकी जो बेटी है वो डंडे के ऊपर चढ़ जाती है और उस डंडे के ऊपर खड़ी रहती है और वो पिता चलता है, चक्र घूमता है और ये प्रदर्शनी देखकर लोग उन्हें पैसे देते हैं। तो एक बार वो पिता अपनी बेटी से कहता है कि कितना अच्छा होता कि ये जो कुछ हम करते हैं तुम मुझे देखा करो, मैं तुमको देखा करूं, ताकि तुम्हारा ध्यान मेरे पर रहे और मेरा ध्यान तुम पर रहेगा और तुम कभी गिरोगी नहीं और मैं भी तुम्हें अच्छे से संभाल सकूंगा। तो वो बेटी कहती है नहीं पिताजी, आप अपना ध्यान अपने ऊपर रखो, मैं अपना ध्यान अपने ऊपर रखूंगी तो ही हम गिरेंगे नहीं। तो जैसे ही ये वो बेटी कहती है वो पिता कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें नहीं देखना है, तुम मुझे ना देखो, यदि मैं तुम्हें देखने में लग गया तो शायद मैं अपना बैलेंस खो दूंगा। और वो बेटी कहती है कि वो अगर पिता को देख ले तो उसका बैलेंस खो जाएगा, इसलिए बैलेंस अर्थात संपूर्ण आत्मिक दृष्टि। जो आज बाबा ने कहा तुमको तीन चीजों से मुक्त होना है, परदृष्टि, दूसरा क्या बताया था याद है किसी को जी, परदृष्टि, दूसरा परचिंतन और तीसरा प्रपंच, प्रपंच अर्थात दूसरों की व्यक्तिगत जीवन में झांकना, देखते रहना, ये तीनों ही चीजें बहुत नुकसान करती है। इस ब्राह्मण जीवन में हमें एक ही व्यक्ति को देखना है। बाबा ने कहा अगर तुमको इतनी आदत हो गई है दूसरों को देखने की तो किसको देखो? ब्रह्मा को देखो, क्योंकि ब्रह्मा भी तो दूसरा है ना। अगर आदत ही है, अगर छूट ही नहीं सकते, अगर दूसरों को देखे बिना होता ही नहीं, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो पर है, तो ब्रह्मा को देखो। तो बैलेंस अर्थात स्वयं को देखना, बैलेंस अर्थात खुद की चेकिंग करना, बैलेंस अर्थात यह देखना कि मेरे अंदर कौन सी चीज का संतुलन नहीं है और कारण क्या है उस संतुलन ना होने के। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि समय जो है वो अपने बहाव में, अपने वेग में कौन कौन सी चीजें ला रहा है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो चारों तरफ फैली हुई है और समय के इस वेग में इतनी तेजी से बह रही है कि जिसमें ये जो संतुलन का पुल है, ब्रिज है, वो टूट जाता है। तो ऐसी लगभग 12 से 14 बातें हैं जो समय के वेग के साथ चल रही है और उसमें सबसे पहली जो है वो है विकार। चहु और विकार ही विकार है, विकारों का साम्राज्य है और इन विकारों से स्वयं को सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इन विकारों से खुद की रक्षा करना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। दूसरा है विकर्म। ब्राह्मण बनने के बाद यदि फिर भी थोड़े थोड़े हर दिन सूक्ष्म विकर्म रोज रोज होते हैं तो हमारे जीवन में कभी बैलेंस नहीं रह सकता, वो बैलेंस टूटता जाएगा। किसी मुरली में बाबा ने कहा है अब दैवी कर्म करो, भ्रष्ट कर्म करना बंद करो। तो वो विकर्म हमारे मन के तल पर भी ना हो, कल्पना के तल पर भी ना हो, वो विकर्म स्मृति के तल पर भी ना हो, हमारे बोल के तल पर, वाणी के तल पर, किसी भी लेवल पर वो विकर्म ना हो। तो दूसरा है विकर्म। तीसरा है व्यर्थ। यदि एक नजर संसार की ओर दौड़ाई जाए तो चारों तरफ व्यर्थ का साम्राज्य है। यदि हम भी वही कर रहे जो संसार के लोग कर रहे, हम भी यदि परचिंतन परदर्शन में लगे हुए हैं, हम भी सारे दिन भर व्यर्थ की ही चर्चा करते रहते हैं तो उनमें और हम में कोई भेद नहीं है फिर। तो समय के बहाव में व्यर्थ बहुत तेजी से बह रहा है, जहां देखो वहां व्यर्थ ही व्यर्थ है। चौथा है निगेटिव। इस संसार में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है क्योंकि हर मन निगेटिव हुआ है। जहां देखो वहां निगेटिव चिंतन चालू है। चाहे कोई कितना भी अच्छा कुछ करे परंतु कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि वो निगेटिव वायुमंडल बनता है और वही फैलता है। तो इस निगेटिव के बहाव से भी हमें अपने आप को बचाना है। अगला है भय। चारों तरफ एक सूक्ष्म भय का वायुमंडल है। रोज अमृत वेला हम अपने आप को देखें कि मेरे अंदर कोई भय तो नहीं है, और यदि है तो उसका कारण क्या है और किस प्रकार का भय है। सुनाई दे रहा है ना? तो देखना है किस प्रकार का भय। जी जी, और भय एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे भय का हमें भी पता नहीं है। जब अचानक वो चीज होती है तब पता चलता है कि मेरे अंदर भी सूक्ष्म में, सबकॉन्शियस माइंड में वो भय समाया हुआ था। इसलिए एक अभ्यास जो हमें रोज करना है वो है कि अपने संपूर्ण जीवन को अमृत वेला साक्षी होकर देखना है। जीवन की जो जो मुख्य घटनाएं हुई है उनको भी देखना है और उन घटनाओं में हमारी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन थी, कहीं हम भयभीत हो गए थे, क्या हुआ था, क्यों बेचैनी आ गई थी, किस कारण से बेचैनी आ गई थी वो देखना है। तो भय, चारों ओर भय का वायुमंडल है, इस भय से हमें अपने आप को बचाना है। अगला है चिंता, सारे संसार में चिंता का वायुमंडल है, हर व्यक्ति एक बोझ लेके जी रहा है, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। आज सुबह की जो अव्यक्त वाणी है बाबा ने, उसमें जो विशेष पुरुषार्थ दिया है, जो हम एक दिन एक तारीख से आ रहा है हर मुरली की एंड में, वो है कि यदि बोझ है या यदि कोई बर्डन है तो क्या करो, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करो, निराकारी, साकारी, आकारी और निराकारी है। छोटी सी एक्सरसाइज पर यह हमें निर्भय बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमें शरीर से अलग करती है। अगर सारे दिन भर ये छोटा सा अभ्यास कई बार कर लिया जाए, मैं आत्मा अभी अभी सूक्ष्म वतन में और मैं आत्मा अभी अभी परमधाम में और फिर नीचे आ गई, शरीर में आना और शरीर में जाना, शरीर में आना और शरीर में जाना, ये छोटा छोटा अभ्यास भी आत्मा में बल भर देगा। क्योंकि भय इतना ज्यादा है संसार में, इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति भयभीत है। हम देखते हैं यहाँ पर जो हम पेशेंट्स देखते हैं, कुछ दिनों पहले एक यंग लड़का आया था, उसकी माँ उसको लेके आई और उसको माँ उसको कहने लगी, हमसे कहने लगी कि इसको भ्रम हो गया है कि इसे कैंसर है और वो इतना गहरा है कि दिन रात उसको डर सा सताया लगा रहता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है। उसकी माँ ने उससे पूछा कहाँ है तुमको कैंसर, तो वो दिखाता है ये देखो ये छोटा सा दाग है ना यहाँ पे, ये कैंसर का दाग है। तो उसकी माँ ने उसको कितना समझाया कि वो कैंसर का नहीं है, पर वो नहीं मानता है। फिर हमारे पास लेके आई तो हमने देखा कितनी बेचैन है माँ और कितना बेचैन वो परिवार है कुछ भी नहीं। फिर उस बच्चे की सारी जांच कराई, सब उसको दिखाया, सब कुछ नॉर्मल कि कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी वो बात उसके इतने अंदर चली गई है कि मुझे कैंसर है, भय है। तो ये भय चारों तरफ छाया हुआ है संसार में। तो समय के इस बहाव में चाहू ओर भय का वायुमंडल है। क्या हम इस भय से अपने आप को बचा सकते हैं, एक प्रश्न है ये। तो समय के बहाव में भय। उसके बाद है पुराने संस्कार, पुराने संस्कार, वो आदतें जो छूट गई थी वो फिर आ जाए, वो बातें जो हमने छोड़ दी थी वो अचानक फिर से उभर कर आ जाए और फिर केवल आए नहीं गिरा के चले जाए, तो हमको दुख बहुत ज्यादा होता है। जिन विकारों को कभी हमने जीत लिया था, विजयी हो गए थे, आज की तारीख में अगर वो फिर आ जाए सूक्ष्म रीति से भी, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारी हार हो गई और बहुत गहरा दुख होता है। तो पुराने संस्कार, उसके बाद है पुरानी दर्दनाक यादें। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है कि जो उसे लगता है नहीं होनी चाहिए, बहुत ही दुखदायी है, पीड़ादायी है। हर व्यक्ति के हृदय में एक दाग है, एक दर्द है, एक सूक्ष्म आघात हुआ है और उसी आघात में वो जिए चला जाता है। फिर एक दिन बाबा मिल गया, एक दिन ज्ञान में आ गया और फिर मुरली की बातें सुनी और बहुत अच्छा अच्छा अनुभव हुए और पुरुषार्थ में भी बहुत आगे बढ़ गए, परंतु फिर भी वो जो दर्द है, वो जो पुरानी यादें हैं, वो जो हमारे जीवन में हुआ है ट्रॉमेटिक मेमोरीज, उससे व्यक्ति मुक्त नहीं है। और समय के इस बहाव में ये पुरानी यादें भी आ जाती है अचानक, कभी बाढ़ का रूप ले लेती है, अचानक से आधी रात, अचानक से किसी एक अज्ञात क्षण में, एक अचानक से जब हम पूर्ण होश में नहीं है, थोड़ा सा आलस में है, और वो हमको पकड़ लेती है। तो हमें पुरुषार्थ करना है कि अपने अंदर देखने का कि कहीं ऐसी कोई यादें तो नहीं, अगर ऐसी यादें हैं पहले तो उनकी थोड़ी सी लिस्ट बनानी है कि ये दो तीन चीजें हैं, ये दो तीन चीजें जैसी मुझे याद आती है स्थिति हिल जाती है, डगमग हो जाती है। वो कौन सी दो तीन चीजें हैं, उनको लिख के रखना है ताकि हमें पता तो रहे कि ये वो बातें हैं जो हमें गिरा सकती है। तो दर्दनाक यादें, उसके बाद में समय के इस बहाव में अगली बात है आत्माएं। असंख्य आत्माओं के साथ हमारा संपर्क आता है, कभी कोई आत्मा, कभी कोई आत्मा, अब तक जो आत्मा मित्र थी अचानक वो शत्रु बन जाती है, या ऐसी कोई आत्मा जो हमारे समीप रहती है, हमारे पास रहती है, और उसके साथ ही हमारा बहुत सूक्ष्म कर्मों का हिसाब है, और वो समझते समझते सारा जीवन निकल जाता है, पर हम उसे समझ ही नहीं पाते ये है क्या। तो कुछ आत्माएं भी होगी जो माया रूप में हमारे सामने आ जाएगी, कुछ आत्माएं भी होगी जो विघ्न रूप में हमारे सामने आ जाएगी, जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा हिसाब किताब है, वो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती रहेगी, और हम कभी शायद ये समझ नहीं पाएंगे कि यह हिसाब किताब चुक तू हो रहा है या नया बन रहा है, ये एक कंफ्यूजन रहेगा। तो आत्माएं भी बहुत ही सारी है जो समय के इस भाव में पानी की तरह आएगी और इस पुल को तोड़ने की कोशिश करेगी। उसके बाद में विकराल परिस्थितियां, जीवन में ऐसी कुछ विकराल परिस्थितियां आ सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, और अचानक वो परिस्थिति आ जाए, जैसे कि स्वजनों की मृत्यु, जैसे अचानक कोई बीमारी। अब तक सब ठीक चल रहा था, डॉक्टर के पास गए, खून की जांचें कराई, और अचानक पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ी एक बीमारी है, बेचैनी चालू हो गई। अब तक योग ठीक था, अब तक ज्ञान ठीक था, पर जब से पता चला कोई बीमारी है, वो पता नहीं कौन सी बीमारी है, पर हो सकती है जब तक वो एक दो मास जांच चल रहे तब तक बेचैनी सी। तो विकराल परिस्थिति बीमारी के रूप में आ सकती है, विकराल परिस्थिति स्वजनों की मृत्यु के रूप में आ सकती है, विकराल परिस्थिति लीगल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या घर वाले अचानक से विरोधी हो गए, या ब्राह्मण परिवार में ही अनबन हो गई, या ब्राह्मण परिवार में ही खेचातान हो रही है, या ब्राह्मण परिवार में ही हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, अचानक से विकराल परिस्थिति है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद में अगला समय के बहाव में आता है पांच तत्व, प्राकृतिक आपदाएं, वो भी अचानक से कभी आ जाए और हमारा सारा पुरुषार्थ हिल जाए। इसके लिए अपने मन की तैयारी रखनी है कि ये सब होने वाला है, ये सब होगा। 18 जनवरी की साकार मुरली चली थी बाबा में, जिसमें कहा था ड्रामा विनाश कराएगा जरूर, ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। तो वो तत्व भी आएंगे परिस्थितियां बनकर। उसके बाद में अगला है समय के बहाव में आलस और अलबेलापन। अचानक से आलस आ गया, और ब्राह्मण जीवन में आलस अर्थात मुरली चिंतन न करना, मुरली की गहराई में न जाना, ब्राह्मण जीवन में आलस अर्थात योग का अतीन्द्रिय सुख जो मिलना चाहिए वो न मिलना, इसी को आलस कहेंगे। वो हमें नहीं मिल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ आलस है। जो डबल लाइट स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, जरूर कोई आलस से। उसके बाद में तेरा भी पॉइंट, तंत्र मंत्र। संसार में तंत्र मंत्र करने वाली भी बहुत सी आत्माएं हैं, और जो कमजोर होंगे उन पर उनका प्रभाव पड़ेगा, और जो शक्तिशाली होंगे उन्हें कुछ नहीं होगा। और लास्ट है 14वां, इवल सोल्स, भटकती हुई आत्माओं का आक्रमण। यहां पर भी जिनका रस शरीर में है उन्हीं आत्माओं पर ये दूसरी भटकती हुई आत्माएं अटैक करती है। जो आत्माएं अंदर से बहुत शक्तिशाली है, तपस्वी है, और जिनका रस शरीर में नहीं है, संकल्पों में है, जिनका रस आत्मा में है, उनको ये इविल सोल्स कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी ये 14 बातें हैं जिसकी हमने चर्चा की, जो कि समय के बहाव के साथ बह रही है। और क्या हम करें कि ये इसमें से कोई भी बात हमें विचलित ना करे, और हमारा जो पुल बना हुआ है बैलेंस का जीवन में वो ना टूटे। तो अभी हम मुख्य चर्चा की ओर आते हैं। कि इस ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से बैलेंस की आवश्यकता है। वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है, पर कुछ बैलेंस की हम चर्चा करेंगे। बाबा ने हमसे कहा है तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे 16 महत्वपूर्ण बैलेंस है जो हमारे जीवन में होने चाहिए। उसमें से 3 जो है वो शारीरिक है, 2 जो है वो मानसिक है, और 11 जो है वो आध्यात्मिक है। तो सबसे पहले हम सीधा अध्यात्म से चालू करते हैं। जिस बैलेंस की जीवन में आवश्यकता है, उसके भी पहले एक दूसरी एक बात हमको याद आ रही है। दक्षिण में रमन महर्षि थे, एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि मेरा बेटा मर गया है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। तो रमन महर्षि उसे 2-3 बातें बताते हैं, आत्मा की बातें बताते हैं, आत्मसंतुष्टि की बातें बताते हैं, पर वो व्यक्ति नहीं मानता। वो कहता है इन सब बातों से तो मुझे कुछ भी इनका असर नहीं हो रहा है मुझ पर, कुछ और बताओ। तो रमन महर्षि कहते हैं मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी जो कि विचार सागरम जो बड़ी किताब है उसमें आई है, दक्षिण की किताब। और वो कहता है कि 2 दोस्त है और वो दोनों दोस्त पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। कहानी बहुत पुरानी है, जिस समय इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था। तो दोनों दोस्त साथ साथ पढ़ते हैं, फिर उनको अच्छी सी नौकरी लग जाती है, और एक दिन एक जो दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, और दूसरा दोस्त है वो और आगे पढ़ता है और बड़ा होता है और नाम कमाता है और बहुत अच्छा उसका बिजनेस, उसका जॉब, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो उसको लगता है मैंने ये जो अपने दोस्त की मरने की घटना है वो घर पर अभी तक नहीं बताई है। तो वो एक व्यक्ति उनके गांव से, भारत से विदेश पहुंचता है, तो उसको कहता है कि ये बात तुम घर पे बता देना कि हम दोनों तो साथ में निकले थे पर मेरा जो दोस्त है उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई परंतु मैं ठीक हूं। तो वो जो साथी है जो भारत से आता है वो भारत वापस जाता है पर वो बताने में गड़बड़ कर देता है। जो व्यक्ति, जो मित्र मर गया था उसके लिए वो बताता है कि वो जिंदा है और बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और जो जिंदा था उसके लिए बताता है कि वो मर चुका है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे ही ये घटना सुनते हैं उन दोनों के माता पिता अलग अलग रिएक्शन हो जाती है। जो ये सुनते हैं कि उनका बेटा मर गया, वास्तव में वो मरा नहीं है, वो तो जिंदा है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और दूसरा परिवार जो ये सुनते हैं कि हमारा बेटा अभी जिंदा है पर एक्चुअली वो मर गया है, वो बहुत, उनको खुशी होती है कि हमारा बेटा इतना अच्छा जॉब कर रहा है, इतना उसका नाम हो रहा है। रमन महर्षि ने कहा ये दोनों ही परिवार कहीं ना कहीं गलती में, क्योंकि उनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई है। उसी तरह हमारा मन भी आत्मा को बहुत सारी गलत सूचनाएं देता है। हमारे मन ने आत्मा को यह बता के रखा है, अंतर्मन मन ने, कि ये जो चीज है ये मुझे सुख देती है, वास्तव में वो सुख नहीं देती है, उसमें दुख है। ये जो विकार है, ये जो निगेटिव है, ये जो व्यर्थ है, बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन अंदर चली गई है, ये मेरे अपने हैं पर वो अपने हैं नहीं, हमें वो भ्रम हो गया है, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई है। और जैसे वो दोनों परिवार में, एक परिवार खुश है एक परिवार दुखी है, पर दोनों की ही स्थिति गलत है, उसी तरह माइंड ने हमको रॉन्ग सिखाया है, बताया है। तो अभी हमको ये प्रोसेस रिवर्स करनी है, और जब तक ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में संतुलन नहीं आ सकता। तो यदि हमें अपने जीवन में संतुलन को लाना है तो कुछ बातों को पहले हमें समझना होगा। तो जैसे हमने कहा संतुलन 3 प्रकार के हैं, एक है फिजिकल शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है आध्यात्मिक। शारीरिक 3, मानसिक 2 और आध्यात्मिक 11। तो ऐसे हम संक्षेप में 16 प्रकार के संतुलन देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अध्यात्म से। तो आध्यात्मिक जीवन में वैसे तो बहुत सारे संतुलन की आवश्यकता है, बहुत सारे बैलेंस की आवश्यकता है। और जैसे हिंदी में कहा जाता है, ताली किसके लिए बजती है? रास्ते पर चलने वालों के लिए नहीं, जो रस्सी पर चलते हैं उनके लिए ताली बजती है। रस्सी पर चलना अर्थात टू मेंटेन बैलेंस। तो जहां पर भी बैलेंस होगा, बाबा कहते हैं वहां ब्लिस है, आनंद है, और वहीं पर ब्लिसफुल लाइफ है। तो सबसे पहला बैलेंस है ज्ञान और योग का बैलेंस। 16 प्रकार के बैलेंस में सबसे पहला बैलेंस जो हमको लाना है वो है ज्ञान और योग का बैलेंस। योग सबको बहुत पसंद है और योग सब बहुत करते हैं, पर एक बात जो ब्राह्मण परिवार में छूटी हुई है वो है ज्ञान का गहन चिंतन, ज्ञान का अध्ययन। जब तक ज्ञान का गहन चिंतन नहीं होगा, जब तक ज्ञान का अध्ययन नहीं होगा, योग हो नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि बाबा ने तो इतना कहा है ना, बस बाप को याद करो आत्मा समझकर, फिर इसमें ज्ञान और चिंतन की क्या आवश्यकता है। परंतु जब तक हर दिन की जो मुरली है उसकी गहराई में हम नहीं जाते, तब तक योग ठीक से लग ही नहीं सकता। और योग होगा भी तो वो वही वही योग होगा। आज सुबह बाबा ने मुरली में कहा, नवीनता, हर चीज नई हो तो योग भी नया होना चाहिए। नया जीवन है, नए संस्कार हो, नए संबंध हो, नए संकल्प हो, नए श्रेष्ठ कर्म हो, नया धर्म है, तुम नई रचना हो, तो तुम्हारे जीवन में हर चीज नई होनी चाहिए। उसी तरह योग भी हर दिन नया होना चाहिए। जो योग हमने कल किया था वो आज ना हो, हर दिन योग की नई कॉमेंट्री बनानी है, एवरीडे न्यू कॉमेंट्री। अमृत वेला की भी नहीं, नुमा शाम के योग की भी नहीं। तो जब ये नवीनता होगी तो ही जीवन में उत्साह होगा, नहीं तो उत्साह खत्म हो जाएगा। लास्ट संडे की मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, पदयात्रियों से मिल रहे थे, बाबा ने कहा ये यात्रा तुम्हारी उत्साह की यात्रा है। आज भी बाबा ने कहा उनको, केवल स्थूल यात्रा नहीं है, तुम हो रूहानी यात्री, तुम हो अलौकिक यात्री। लोग तुम्हें देखे तो ये समझे कि ये रूहानी यात्री है, फरिश्ते है, धरती से ऊपर उठे हुए है। तो ज्ञान और योग को हम जितना महत्व दे रहे उतना ही महत्व ज्ञान को भी दे। और ज्ञान अर्थात केवल क्लास में जाकर मुरली सुनना और पॉइंट्स लिखना नहीं है, ज्ञान अर्थात उसकी गहराई में जाना। आज ही की मुरली में बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में कहा कि तुम्हें सुना तो बहुत है, अब क्या करना है, इस ज्ञान को समाना है। जैसे ब्रह्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, वैसे तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि बाप और बच्चों में समानता होनी चाहिए। तो ज्ञान सुना तो बहुत है, अब उसको समाना है, और समाने के लिए चाहिए चिंतन, मनन, अध्ययन। तो सबसे पहला बैलेंस है जो हमको इस जीवन में लाना है वो है ज्ञान और योग का बैलेंस। तो योग में भी नवीनता हो, और योग में नवीनता कैसे लाई, वो लाई जाए, ये भी एक प्रश्न है। तो उसके लिए योग में नवीनता के लिए हर दिन एक नवी कॉमेंट्री लिखनी है, खुद ही लिखनी है। जैसे मुरली क्लास पूरी होती है, बाबा के कमरे में सेंटर पर जहां आप जाते हैं वहां बाबा का कमरा है, और जो जो मुरली में सुना उसके आधार से एक छोटी सी कमेंट्री वहीं लिख देना, और फिर उस कमेंट्री का अभ्यास नुमा शाम के योग में करना। उस कमेंट्री में दो 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 तीन मुख्य बातें होगी, जैसे कि फरिश्ता, जैसे कि परिक्रमा, जैसे कि विश्व को सकाश, जो उस दिन की मुरली में आई थी। तो मुरली क्लास के तुरंत बाद या मुरली सुनते सुनते ही वहीं पर एक तरफ छोटी सी कॉमेंट्री तैयार कर देनी है, और फिर नुमा शाम के योग में वही कॉमेंट्री का अभ्यास करना है, और अगले दिन अमृत वेला उसको और अच्छी तरह से अभ्यास करना है। तो हर दिन योग में नवीनता होगी। तो जितना हम ज्ञान की तरफ ध्यान दे उतना ही योग की तरफ भी ध्यान दे। योग में भी नवीनता हो, ज्ञान में भी नवीनता हो, सुनने में भी नवीनता हो, लिखने में भी नवीनता हो। हम देखते हैं यहाँ मधुबन में डबल विदेशी जब मुरली क्लास में बैठते हैं तो उनके मुरली लिखने की मेथड बहुत अलग होती है। कोई कोई विदेशी एक पेपर ले लेते हैं, उसमें चित्र निकालते हैं और उसको कलर भी कर देते हैं, वहीं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। तो ऐसी क्रिएटिविटी हो। हम देखते हैं मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, ऐसे बहुत सारे शांतिवन में बहुत सारे छोटे छोटे भाइयों के बहनों के ग्रुप बने हुए हैं, जो कुछ कुछ तो रोज चर्चा करते हैं शाम को या रात को, और कोई कोई हफ्ते में एक बार दो बार बैठते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो ज्ञान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान की रोज चर्चा हो। एक होता है क्लास कराना, एक होता है क्लास सुनना, वो दोनों अलग चीजें हैं। चर्चा करना एक दूसरी बात है। जैसे आज एक बहन ने हमको मैसेज किया और पूछा कि ये परपंच क्या है। बाबा ने आज परचिंतन, परदर्शन कहा, परदृष्टि, ये परपंच क्या होता है। तो ऐसी जो चीजें होती है जो कई बार आ चुकी है पर हमने शायद ध्यान नहीं दिया, वो समझने के लिए क्या चाहिए? डिस्कशन चाहिए ज्ञान का। तो ज्ञान का डिस्कशन होता रहे, योग हमारा शक्तिशाली हो और नवीनता हो, ये पहला बैलेंस। सेकेंड टाइप ऑफ बैलेंस, कर्म और योग। कर्म और योग का बैलेंस, कर्म करते हुए बीच बीच में योग, कर्म करते हुए बीच बीच में योग। उसमें कुछ विधियां हैं, जैसे ये वो योग नहीं है, अमृत वेले वाला योग नहीं है ये, ना ही नुमा शाम का है। हम बात कर रहे हैं सारे दिन भर में जब कोई बहुत व्यस्त है, ऑफिस में है, ट्रैवल कर रहा है, किचन में है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एंकरिंग में है, या बहुत सारी चीजें उसको संभालनी पड़ती है, जिम्मेदार है, बहुत सारी चीजें करनी है उसको, ऐसा व्यस्त है, ऐसी व्यस्त से व्यस्त दिनचर्या में कर्मयोगी कैसे बने? उसके लिए कुछ छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। जैसे पहला अभ्यास, आत्मा शरीर से निकल जाए, बाबा के पास पहुंचे, दृष्टि ले और वापस आ जाए। छोटा सा अभ्यास, आत्मा शरीर से बाहर जाए, बाबा से मिलके वापस आ जाना, या फरिश्ता स्थिति धारण कर लेना, या परमधाम में बाबा को टच करके आ जाना, या सीधा सतयुग पहुंच जाना, एक दृष्टि लगा देखना दृष्टि से और वापस आ जाना, या तो संसार की परिक्रमा करके आ जाना, या तो मधुबन पहुंच जाना, चार धाम की एक सेकंड में यात्रा करके, अभी अभी शांति स्थान, अभी अभी हिस्ट्री हॉल, अभी अभी बाबा का कमरा और अभी अभी कुटिया। तो एक एक सेकंड के छोटे 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 अभ्यास करते रहने, ताकि कर्म और योग का बैलेंस हो जाए। नहीं तो क्या होता है, केवल हम कर्म करते रहते हैं, योग छूट जाता है, और जहां केवल कर्म है और योग नहीं, वहां फिर टकराव होगा, वहां फिर लड़ाई होगी, वहां संस्कारों में मतभेद होगा, मन मुटाव होगा, और सेवा में खुशी नहीं होगी, सेवा में व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दूसरा जो बैलेंस है जो हमें अपने जीवन में लाना है, वो है कर्म का और योग का बैलेंस। तो कर्म में योग को शामिल कर देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैलेंस है। चाहे कोई कोई भी, चाहे सेवा केंद्र में है, गीता पाठशाला में है, चाहे घर गृहस्थी में रहते हैं, या जॉब करते हैं, या कुछ भी करते रहे, ऐसा ना हो कि हमारा बाबा के साथ सारा के सारा कनेक्शन टूट जाए, छोटी जोत जलती रहे। जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि सुबह बहुत अच्छी अवस्था होती है, शाम को अवस्था बिगड़ जाती है। उसका कारण है सारे दिन भर बाप से वियोगी बन जाते। थोड़ा 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 भी अभ्यास करते रहे तो नुमा शाम तक हम वापस अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। पर पूरा ही कनेक्शन अगर टूट गया, इतना टूट गया कि बाबा भी है यह भी भूल जाता है आत्माओं को, जब ऐसी अवस्था आती है तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए सारे दिन भर में थोड़े थोड़े योग के छोटे छोटे अभ्यास करते रहे। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ बैलेंस। थर्ड टाइप ऑफ बैलेंस है, ये अगले तीन बैलेंस है, ये प्रेम से संबंधित है। पहला लव और लॉ, तो तीसरा बैलेंस लव का और लॉ का। कल का जो तीव्र पुरुषार्थ था, कल की साकार मुरली के जो अंत में आया, उसमें बाबा ने कहा था विकराल रूप धारण करो, विकर्मों पर और व्यर्थ पर। विकराल रूप अर्थात महाकाली का रूप। लव और लॉ, ये दो चीजें हैं। अगर लवफुल इतने बन गए कि लॉ को ही तोड़ दिया तो फिर दुखी होना पड़ेगा। अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर ली कि उस दोस्ती में हम ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण जीवन की बहुत सारी मर्यादाओं को बार बार तोड़ते हैं, तो वो लव अनलॉफुल हो जाता है और वहां फिर दुख होगा। इसके लिए जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारी मित्रता है, वो सब लोगों को हमें देखना है कि क्या इनके साथ हमारे संबंध लवफुल है, लॉफुल है। लव तो आवश्यक है ही है, किसी के प्रति घृणा नफरत अगर है तो अंदर बहुत बेचैनी रहेगी, हलचल रहेगी। और यदि प्रेम है परंतु वो लॉफुल नहीं है तो भी दुख रहेगा। जैसे मुंबई में एक माता थी और उस माता के पास एक कुमार रहता था और उस माता का उस कुमार से बहुत ज्यादा प्यार था। और उस कुमार ने एक दिन कहा मुझे विदेश जाना है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। और उस माता ने उसको पैसे दिए और पैसे भी कम नहीं, 18 लाख रुपए दिए। और वो कुमार तब से गया तो गया, आज तक उसका कोई अता पता नहीं कहां चला गया। और माता अभी दुखी है, जब भी योग में बैठती है तो उसे बस वो 18 लाख 18 लाख दिखते रहते। लॉ सोच समझ के हर कदम हो, मर्यादा अनुसार हर कदम हो, नहीं तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ता है कि ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, क्यों उस पर भरोसा कर लिया, क्यों उस पर विश्वास कर लिया, और फिर दुखी होते रहना पड़ता है। तो लव हो परंतु वो लव कैसा हो, लॉ फुल लॉ हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बैलेंस है। उसके बाद में है प्रेम और शक्ति, कहां प्रेम स्वरूप बनना है, कहां शक्ति स्वरूप बनना है। विकारों के प्रति कभी भी प्रेम स्वरूप नहीं बनना है, विकार के ऊपर शक्ति रूप हो, हमारा देवी का रूप हो, महाकाली का रूप हो। जब हमें पता चल रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये विकर्म है, ये पाप है, ये निगेटिव है, ये व्यर्थ है, तुरंत उसको छोड़ देना है, तुरंत उसका त्याग कर देना है। हर वो चीज, हर वो वस्तु जो हमारे और भगवान के बीच में आए, विष की तरह, उसका त्याग कर देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैलेंस है, शक्ति रूप एक तरफ और दूसरी तरफ प्रेम स्वरूप। जब विकराल परिस्थिति आई तो हम शक्ति रूप अपना प्रकट कर ले, दुखी नहीं हो जाना, हार नहीं जाना है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, सोच सोच के इतना दुखी हो जाते हैं कि हिम्मत ही खो देते। इसके लिए वहां पे हमें शक्ति स्वरूप बनकर रहना है, आह्वान करना है शक्तियों का। आज के पार्टियों की मुलाकात में बाबा ने वही कहा है कि तुम्हें शक्ति स्वरूप बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, सुना तुमने बहुत है, अब इस ज्ञान को संभालो, सारी शक्तियों को संभालो ताकि तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओ। इस संसार की कोई ऐसी बात आ जाए और हमें कमजोर बना दे, ऐसा कभी ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो सूक्ष्मता से देखना है वो कौन सी बात है जो हमको कमजोर बना देती है, उस बात में इतनी शक्ति कहां से आ गई जो मेरे जैसी पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा कमजोर हो जाती है और फिर उदास हो जाती है, फिर दुखी होती है, फिर मनुष्यों का सहारा ढूंढते, ब्राह्मण परिवार के लोगों का सहारा ढूंढते, इसको उसको फोन करते रहते और कुछ उत्तर मिलता नहीं। तो हमें यह भी देखना है कि कहां कहां शक्ति रूप बनना है। और दूसरी तरफ हमने कहा प्रेम स्वरूप। तो इस संसार में बहुत दुखी आत्माएं हैं, उनके प्रति भी हमें रहम दिल का भाव हो हमारे अंदर और हमारे अंदर प्रेम हमेशा रहे, किसी के लिए भी घृणा नफरत ईर्ष्या क्रिटिसिज्म ना हो। अभी अभी मुरली चली थी लास्ट संडे या उसके पहले, बाबा ने कहा था उदार चित अर्थात जिसमें घृणा ना हो, जिसमें ईर्ष्या ना हो, और तीसरा था क्रिटिसिज्म। ईर्ष्या, खुद परेशान दूसरे परेशान, घृणा खुद गिरते दूसरों को गिराते, और क्रिटिसिज्म, कोई दूसरा जा रहा है उसको धक्का दे देते, ये तीनों ही चीजें ना हो। तो दूसरा जो बैलेंस की हम चर्चा कर रहे थे वो है, एक तरफ तो हम शक्तिशाली भी हो परंतु प्रेम स्वरूप भी हो, तो ये एक बैलेंस। उसके बाद में है लविंग और डिटैच्ड, जिसको बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। किसी से बहुत प्यार करना अच्छा है पर डिटैच रहना प्यार करते हुए भी बहुत अच्छा है। कल रात ज्ञान सरोवर में आए हुए वियतनामी ग्रुप से मिल रहे थे, तो वहां पर संबंधों की चर्चा चल रही थी, तो एक भाई ने, एक बहन ने एक प्रश्न पूछा, इज इट रॉन्ग टू फॉल इन लव इन ब्राह्मिन लाइफ विद समवन, क्या ब्राह्मण जीवन में किसी से प्यार में पड़ सकते हैं? क्या उत्तर है आप लोगों का, क्या उत्तर है? वो बहन ने पूछा, ब्राह्मण जीवन में एक भाई दूसरे भाई बहन के प्रेम में प्रेम कर सकते हैं क्या विशेष? तो ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। हमने कहा प्रेम तो एक बाप से करना है बस। 18 जनवरी की मुरली थी जिसमें एक बहुत शक्तिशाली वाक्य था, बाबा ने कहा था एक बाप दूसरा ना कोई, ये अंतिम मंत्र है। कल परसों की मुरली में भी था, किसी से दिल नहीं लगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। वास्तव में अगर प्रेम की डेफिनेशन दी जाए तो मनुष्य ने जो भी प्रेम की डेफिनेशन रची है वो सब अपूर्ण है। प्रेम चाहे मां अपने बेटों से करती है या पति पत्नी से, वो सारे अपूर्ण प्रेम है। संपूर्ण प्रेम केवल और केवल आत्मा का जो परमात्मा के साथ है वही प्रेम है। इसके अतिरिक्त इस संसार में प्रेम कोई दूसरा है ही नहीं। अल्टीमेट डेफिनेशन जो प्रेम की है वो है आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है, जो प्रेम है वो प्रेम है। तो लविंग और डिटैच्ड, ये बैलेंस रखना है। किसी के इतने करीब नहीं चले जाना कि फिर उससे दूर होना मुश्किल हो जाए। हमारे संबंधों में हमेशा एक डिटैचमेंट है, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट, चाहे वो पति पत्नी ही का क्यों ना हो परंतु उनके बीच में भी एक सूक्ष्म डिटैचमेंट हो। हर एक को स्पेस चाहिए, हर एक को जगह चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। उस दिन ओपीडी में हमारे पास एक बहन आई तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे युगल जो है वो मेरे जीवन की कोई भी बात को जाने। हमने कहा जैसे? तो उसने उदाहरण दिया कि मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था और मैं कहीं दूसरे कमरे में थी, उसमें रिंग बजी, मैसेज आया, तो उन्होंने मैसेज पढ़ लिया और फिर मैं जब आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मैसेज पढ़ा? उन्होंने कहा हाँ मोबाइल पड़ा था, बजा तो मैंने देख लिया। तो उसने कहा कि आपको नहीं देखना चाहिए थी। तो वह हमसे पूछ रही थी क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। उस युगल के लिए बहुत छोटी सी बात है पर वो कहती है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि चाहे कोई भी हो पर मेरी प्राइवेट लाइफ मेरी अपनी लाइफ है। वो भले दोनों ही ज्ञान में है पर वो कहती है कि ये मेरी अपनी जीवन है। तो हर व्यक्ति को एक स्पेस चाहिए, हर व्यक्ति को जगह चाहिए, वो उसे दे देनी है। तो लविंग और डिटैच्ड, लविंग और डिटैच्ड, जितना हम लविंग हो उतने ही हम डिटैच्ड भी हो। अगर बहुत ज्यादा किसी से लविंग हो गए, इंग्लिश में एक कहावत है फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यदि हम किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जानने लगे तो फिर धीरे धीरे उसके अवगुण भी दिखाई देने लगते हैं, धीरे धीरे अब तक उसके प्रति जो हमारा सम्मान है वो भी कम होने लगता है। इसके लिए प्रेम तो सबके करना है, तोड़ तो सबसे निभानी है, परंतु फिर भी हमारे अंदर एक सूक्ष्म डिटैचमेंट हो, ये भाव निरंतर हो कि ये सारे जो लोग हैं ये मनुष्य आत्माएं हैं और अंतु मेरा प्यार केवल और केवल एक परमात्मा से है। तो ये भी एक लविंग एंड डिटैच्ड। तो ये पांचवे प्रकार की का बैलेंस। तो हमने पहले देखा ज्ञान और योग का बैलेंस, दूसरा देखा योग और कर्म का बैलेंस, तीसरा देखा प्रेम,
कॉल एंड हो गया उनकी तरफ से, उन्होंने कॉल एंड कर दिया।
ओम शांति। सुनाई दे रहा है ना जी। फिर उसके बाद में हमने देखा प्रेम, लव और लॉ का बैलेंस, लव और पावर शक्ति का बैलेंस, और लव लविंग और डिटैच न्यारा और प्यारा। अगला बैलेंस है छठवा, साधन और साधना। हमारा जीवन साधना का जीवन है। साधन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है, परंतु वो साधन हमारी साधना का अपहरण ना कर ले, वो साधन हमारी साधना को भस्म ना कर दे। चाहे साधन कितने भी अच्छे हैं, परंतु फिर भी है तो वो साधन, हमारी साधना जितनी हो सके निराधार हो। हाँ, बीच में अगर साधन आते हम उनका प्रयोग करें, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी साधन नहीं होंगे, तब भी हमारी स्थिति हमारी साधना निरंतर हो। इसलिए कहा कि साधना हमारी कैसी हो, निराधार, कोई आधार ना हो उसमें। आज सब कुछ मिल रहा है, एक समय आएगा कुछ भी नहीं मिलेगी। बाबा ने विदेशियों से कहा है अव्यक्त मुरलियों में कि एक समय आएगा कि तुम्हें इन पहाड़ों पर सोना पड़ेगा, एक समय आएगा तुम्हारे जो बड़े बड़े संदूक बैग है उसी को तुमको तकिया बनानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी समय आने वाला है, चारों तरफ आवाजें, चारों तरफ विनाश हाहाकार हो रहा है, उसमें एक सेकंड में अशरीरी हो जाना। कितने जल्दी हम अपने आप को स्थिर कर देते हैं, कोई भी पुराना संस्कार अटैक ना करे, कोई भी पुरानी बातें याद ना आए, एक सेकंड में बस वहीं के वहीं स्थिर हो जाना, बाबा की याद में खो जाना। ये अभ्यास है, लास्ट समय में केवल एक ही अभ्यास है, और वो अभ्यास है एक सेकंड में अशरीरी। वहां ना तो मुरली रहेगी, ना तो कोई मुरली क्लास रहेगा, वहां ना तो रेड लाइट रहेगी, ना तो कोई गीत रहेगा, ना तो कोई क्लास रहेगी, ना तो कोई संगठन इस तरह का होगा, सब कुछ बिखरे हुए होंगे। ऐसी विकराल स्थितियों में हम कितना जल्दी अपने आप को स्थिर कर देते हैं, एक सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, बस यही एकमात्र अभ्यास है। तो ये अभ्यास निरंतर करते रहना है। साधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वो साधन हमारी कमजोरी ना बन जाए। यहां पर ज्ञान सरोवर में पिछली बार जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक बहुत बड़ी डॉक्टर आई थी, और वो जब आ रही थी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी किसी जगह, किसी मेडिकल कॉलेज में, और वो जब आ रही थी ट्रेन में, उसका मोबाइल चोरी हो गया या गुम गया। तो वो जब यहां पहुंची ज्ञान सर, और तो इतनी हलचल में थी, इतनी हलचल में थी, बहुत डिस्टर्ब थी। अब घर कैसे बताऊंगी, ये हुआ वो हुआ, और अगले तीन दिन उसे यहां रहना था। पर तीन दिन के बाद उसने जो जाते समय अनुभव सुनाया वो ये था कि ये वरदान साबित हुआ मेरे लिए, जो शांति मुझे 30 साल में आज तक नहीं मिली वो पहली बार यहां आकर मिली, और उसका एक कारण उसने बताया ये मोबाइल का गुम हो जाना। तो ऐसा ना हो कि हम प्रयोग करते करते उस पर इतने निर्भर हो जाए कि दुखी होना पड़े वो जब ना रहे। जब है तो बहुत अच्छा प्रयोग करो उसका, परंतु हमारा मोबाइल स्पिरिचुअल मोबाइल हो, स्पिरिचुअल मोबाइल अर्थात स्पिरिचुअल कॉल्स हो, स्पिरिचुअल मोबाइल अर्थात स्पिरिचुअल मैसेजेस हो, स्पिरिचुअल मोबाइल अर्थात स्पिरिचुअल व्हाट्सएप हो, स्पिरिचुअल सोशल मीडिया हो, स्पिरिचुअल मोबाइल अर्थात स्पिरिचुअल गूगल हो, स्पिरिचुअल मोबाइल अर्थात स्पिरिचुअल सर्फिंग हो, स्पिरिचुअल सर्चिंग हो, उसकी हर बात स्पिरिचुअल हो तो ही वो वरदान है, अन्यथा वो नरक का द्वार है, अर्थात वो रावण का सबसे बड़ा शस्त्र है जो हमें मार देगा, बंदी बना लेगा। उस दिन पांडव भवन में क्लास करा रहे थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमें परिक्रमा करनी है, विश्व की परिक्रमा करनी है, सेवा केंद्रों की परिक्रमा करनी है, मधुबन की परिक्रमा करनी है, तो एक भाई कह रहे थे हमें अपने मोबाइल की भी परिक्रमा करनी चाहिए रोज, इसको भी घूमकर क्या करना है, सकाश देना है ताकि वो भी ठीक चले, ताकि उससे हमारे द्वारा कोई विकर्म ना हो। तो साधन और साधना, इसका भी हमें क्या करना है, बैलेंस, जितना हो सके साधना संपूर्ण निराधार हो। हाँ, सुबह अगर उठने के लिए अलार्म चाहिए तो बहुत अच्छा, पर बाबा ने कहा है कि प्रभु प्रेम ही वो अलार्म है जो तुम्हें अमृत वेले उठाता है। यदि 10 साल 20 साल 30 साल और 40 साल ज्ञान में चलने के बाद भी हमें उठने के लिए अलार्म की आवश्यकता है तो जरूर अब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया है। तो हमारी साधना ऐसी हो कि ऑटोमेटिक होती रहे, बिना किसी आधार के अपने आप चलती रहे, बिना किसी बैसाखी के, इंडिपेंडेंट पैरासिटिक एग्जिस्टेंस ना हो हमारा, किसी पर भी हम निर्भर नहीं, स्वावलंबी, कोई व्यक्ति आधार ना हो। जैसे किसी ने कहा था कि ऐसा हम देखते हैं या बहनें बताती है कि हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि दूसरी बहन अगर योग करे तो उसके साथ योग में बैठते हैं, वो अगर भोजन करे तो हम भोजन करते हैं, वो अगर घूमने जाए तो हम भोजन घूमने जाते हैं, वो अगर मुरली पढ़े तो हम मुरली पढ़ते हैं, सब कुछ उसके साथ ही करते हैं। अगर वो नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर कुछ भी इच्छा नहीं होती है करने की, इतना निर्भर हो गए एक दूसरे पर, ज्ञान योग में ही निर्भरता आ गई है। हमें याद है एक बार हम विदेशियों की क्लास करा रहे थे और उस क्लास में हमने एक पॉइंट कही थी कि आप लोग सब आपस में मिलकर ज्ञान की चर्चा करें और चर्चा करने के लिए दो लोग की आवश्यकता है। तो एक बहन ने खड़े होकर एक प्रश्न पूछा, अगर जिसके साथ चर्चा कर रहे उसी में मोह हो गया तो क्या करेंगे, अगर जिसके साथ चर्चा कर रहे वही बंधन बन गया तो। हमने कहा यह भी हो सकता है, जिसको ज्ञान योग का साथी बनाया वही बंधन बाधा बन सकता है, इसके लिए वहां पर भी ध्यान रखना है कि कहीं मेरा यह संबंध बंधन तो नहीं बन रहा है। तो साधन और साधना। अगला बैलेंस है स्वस्थिति और सेवा। सेवा बहुत आवश्यकता है, यज्ञ को आवश्यकता है सेवा की, और सेवा हमारा आधार है। आज की मुरली में बाबा ने कहा पदयात्रियों से मुलाकात, ये मत समझ लेना कि 3 महीने सेवा कर ली, कुछ दिन सेवा कर ली तो हो गया, सेवा तो निरंतर है, सेवा तो हमेशा है, सेवा सदा काल की है, एक दो दिन की नहीं है। सेवा के लिए तो जन्म है ब्राह्मण, ब्राह्मण सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। परंतु वो सेवा हमारी स्वस्थिति को हिला ना दे। हमारी स्थिति सबसे पावरफुल चीज है इस ब्राह्मण जीवन में, इस संसार में या इस यज्ञ में जिसकी स्थिति शक्तिशाली है वो सबसे आगे है, जिसकी स्थिति कमजोर है वो पीछे है। इसके लिए ऐसा ना हो कि सेवा के जंगल में भटकते भटकते स्वस्थिति ही खो गई, पता ही नहीं, सेवा कर रहे सुबह से लेकर रात तक कंप्यूटर में बैठकर कंप्यूटर चला रहे और ये कहते हैं कि हम तो सेवा में लगे हुए, पर सेवा कहां हो रही है, बाबा तो है ही नहीं, बाबा तो गया, तो इसे सेवा नहीं कहते। सेवा वो हो कि जिसमें हमारी स्थिति बहुत पावरफुल हो, और वास्तव में सेवा स्थिति से ही होती है, नहीं तो भाषण देने वालों की संसार में कमी नहीं है, संसार में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी नहीं है, संसार में साधनों की कमी नहीं है। हमने सुना कल के न्यूज़पेपर में ही एक न्यूज थी कि आप जहां बैठे हैदराबाद वहां पर एक बहुत बड़ा मेडिटेशन क्या कहते हैं जिसको हॉल बन रहा है, बाहर की संस्था है वो बना रही है, शायद एयरपोर्ट के पास हैदराबाद में एक बहुत बड़ा बहुत विशाल मेडिटेशन हॉल बन रहा है, कोई एक दूसरी संस्था है वो उसको बना रही है। तो संसार में मेडिटेशन करने वालों की, मेडिटेशन के जगह की, मेडिटेशन के हॉल की जरा भी कमी नहीं है, वो तो संसार में भी है, परंतु कमी जो है वो है स्थिति की। इसीलिए इस जीवन में ये दो बैलेंस बहुत जरूरी है, एक तरफ स्वस्थिति हो और फिर उसका परिणाम सेवा हो। एक प्रश्न है आप सभी से, सबको सुनाई दे रहा है ना, तो एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हम सेवा कर रहे हैं, खुशी प्राप्त हो इसलिए सेवा कर रहे हैं या खुश है इसलिए सेवा कर रहे हैं, ये प्रश्न है। क्या कहेंगे, हम खुश है इसलिए सेवा कर रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं ताकि खुशी मिले? हाँ, ये उत्तर सही उत्तर है, खुश है इसीलिए सेवा कर रहे हैं। अगर कोई ये आधार से सेवा कर रहा है कि ये सेवा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे खुशी मिले, तो जिस दिन सेवा छीन ली जाएगी तो खुशी गायब हो जाएगी, या जिस प्रकार की हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा हमको ना दी जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में खुशी सेवा का आधार नहीं है, खुश है इसीलिए सेवा हो रही है, सेवा कर रहे इसलिए नहीं कि खुशी मिले। हाँ, वो तो मिलेगी, वो दूसरी बात है, परंतु आधार वो नहीं हो, हमारी खुशी का आधार सेवा नहीं है। एक समय आएगा सारी सेवाएं बंद हो जाएगी, तब तो फिर दुखी हो जाएंगे। हम देखते हैं कभी हॉस्पिटल में कोई भाई एडमिट हो जाते हैं या कोई बहन जो कि दिन रात सेवा करते हैं और अचानक फ्रैक्चर हो गया और 1.5 महीने तक उनको पैर लटका कर बैठना पड़ता है, तो कोई कोई बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि हमको तो सेवा करनी है। और कोई कोई भाई बहनों को हमने देखा है तुरंत उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि अब तक बाबा ने वो सेवा कराई, अब हमको ये सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, तुरंत अपने आप को एडजस्ट कर लेते, उस परिस्थिति को भी एडजस्ट कर लेते कि ये कोई हिसाब था, बस फुल स्टॉप। और दूसरे कोई वो क्या करते हैं, दिन रात वो कहानी सुनाते रहते हैं, दिन रात एक ही रिकॉर्डिंग, जो भी मिलने आता है, अच्छा कैसे फ्रैक्चर हुआ, अच्छा हम वहां से जा रहे थे, वो वहां से आ रहा था, गलती उसकी थी, वो हो गया, फिर दूसरा आया, फिर वो पूछता है अरे कैसे हो गया, फिर वो बताते हम यहां से जा रहे थे, वो वहां से आ रहा था, फिर फ्रैक्चर हो गया, फिर पूछते अरे गलती उसकी थी, फिर वो गया, सुबह से लेके 10 लोग आए पूछने के लिए, हर एक को वही कहानी सुनाई और फिर वो रिकॉर्डिंग अंदर जा रहा है कि गलती उसकी थी। तो हमारे जीवन में हम खुश है इसलिए सेवा कर रहे, सेवा हमारी खुशी का परिणाम है, सेवा इज द रिजल्ट ऑफ अवर हैप्पीनेस। अगर सेवा कर रहे और सेवा करते करते खुशी खत्म हो गई है, सेवा कर रहे पर सेवा में टकराव है, सेवा में लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे से अनबन है, बनती नहीं है बिल्कुल, ऐसी सेवा बाबा ने तो किसी मुरली में कहा, एक वरदान में आया था, जो सेवा खुशी को खत्म कर दे वो सेवा ही छोड़ दो, यहां तक भी बाबा ने कहा। तो स्वसेवा, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैलेंस है। कोई भी सेवा करो परंतु प्रायोरिटी जो देनी है वो है स्थिति, और उसका आधार है अमृत वेला। अगर ऐसी सेवा कर रहे हैं कि जिसमें रोज अमृत वेला मिस हो रहा है, ऐसी सेवा का कोई अर्थ नहीं है। रोज रोज अमृत वेला मिस हो रहा है, रोज रात को सोने के लिए 12 बज रहे और फिर उठ रहे 5 बजे 6 बजे 7 बजे और उठते ही मुरली सुन रहे या नहीं सुन रहे, तो ऐसी सेवा फलदायक नहीं होती। तो सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस। उसके बाद में है सीरियसनेस और एंटरटेनमेंट का बैलेंस, जिसको कहते हैं गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। एक मुरली की डेट आपको बता रहे, सबको वो मुरली पढ़नी है। मुरली की डेट है 14 जनवरी 1990। जिसमें बाबा ने कहा है व्यर्थ बोल की परिभाषा क्या है, वॉट इज वेस्ट वर्ड्स, वॉट आर वेस्ट वर्ड्स, जिसमें बाबा ने कहा है कि वो शब्द जिसमें तुम किसी को टॉन्ट करते हो वो वेस्ट में आएगा, वो शब्द जिसमें तुम न्यूज एक्सचेंज करते हो यहां वहां की, सेवा का समाचार तो सुनाते हैं परंतु सेवा के समाचार सुनाते सुनाते सेवाधारियों की कमियों का वर्णन करते हो, सेकंड, थर्ड, मिक्स्ड चटनी, मिक्स्ड कर देते हैं चटनी जिसमें इधर उधर की बातें होती है, किसी को गिराने वाले बोल, किसी को दुखी करने वाले अयुक्तियुक्त बोल जिसको बाबा ने कहा है, अगर ऐसे बोल है तो वो बोल वेस्ट में आते हैं। और एक महत्वपूर्ण उसमें जो बोला है बाबा ने वो है कि लिमिट के बाहर के बोल, बहुत ज्यादा जिसमें हंसी मजाक है, लोग कहेंगे ये बोलते बहुत अच्छा है परंतु ज्यादा बोलते हैं, ये हंसी मजाक इनकी अच्छी है, हमारी हंसी मजाक में विकारों की वायु ना हो, हमारी हंसी मजाक में किसी को दुखी करने का, किसी को गिराने का भाव ना हो। तो ये अव्यक्त वाणी है, इसको हर एक ने पढ़नी है, जिसमें बाबा ने बोल के विषय में बहुत सारी चार बातें ये जो कही है, बोल कैसे हो तुम्हारे, 14 जनवरी 1990। तो कहां गंभीर होना है, कहां रमणीक होना है, रमणीकता की भी बहुत आवश्यकता है, रमणीकता की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे आज ही का उदाहरण दें तो आज जैसे 26 जनवरी है, आज मधुबन पांडव भवन से लगभग 40-45 भाई पिकनिक पर गए, तो एक तरफ तपस्या भी करते हैं, एक तरफ बीच बीच में पिकनिक भी जाते हैं, तो ये भी आवश्यकता है, वो भी आवश्यकता है। और पिकनिक भी ऐसे पिकनिक हो हमारी ज्ञान युक्त पिकनिक हो, अगर कभी हम रमणीकता भी करते हैं उसमें ज्ञान योग जोड़ा हुआ हो, बीच में ही बाबा को याद करना, मुरलियों का चिंतन करना, मुरलियों का अध्ययन करते करते जाना, तो वो हमारी पिकनिक हो। तो एक तरफ रमणीकता परंतु दूसरी तरफ अत्यंत सीरियस, जहां ज्ञान योग की बात आ जाए वहां सीरियसनेस हो, जहां जिम्मेदारी की बात आ जाए वहां सीरियसनेस हो, ऐसा ना हो कि हमारी सीरियसनेस खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि रमणीक होते होते इतने ज्यादा रमणीक हो गए कि रमणीकता में ही बहुत सारी थकान हो गई, व्यर्थ मुंह से निकल गया, पर चिंतन निकल गया, पर दृष्टि, पर प्रपंच में चले गए और फिर स्वस्थिति को खो दिया। तो दोनों चीजों का बैलेंस, सीरियसनेस और एंटरटेनमेंट। उसके बाद में है अगला, सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी, ये भी बैलेंस बहुत जरूरी है, सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी। एक तरफ हमारा जो पोशाक हो, खान पान हो, बहुत सिंपल हो, परंतु दूसरी तरफ हम रॉयल भी हो, ऐसा नहीं कि एकदम भिखारी जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों ही चीजें हो। परंतु इसमें एक बहुत बड़ी माया है और वो माया है फैशन की माया, और वो है पोशाक की माया, और वो है हाई स्टैंडर्ड्स की माया, वो करते करते हमारी साधना लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये ना हो। तो इसका भी ध्यान रखना है, चाहे हमारा चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिंपल हो परंतु रॉयल हो, तो ये एक बैलेंस है सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी का। उसके बाद में है लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, दसवां बैलेंस इस ग्रुप में लौकिक और अलौकिक, पर इसमें भी एक बहुत बड़ी माया है कि लौकिक से तोड़ निभाते निभाते अपने मोह का ही पोषण करते हैं, अंदर अंदर में मोह भरा है परंतु बाहर ये दिखाते हैं जैसे हम लौकिक की लौकिक में तोड़ निभा रहे हैं, पर वो तोड़ निभाना नहीं है, वो हमारा मोह है, मोह का एक्सटेंडेड रूप है वो, जिसको हम तोड़ निभाना कह रहे हैं। जैसे इसके पहले भी एक बार सुनाया था, एक परिवार था, बहुत पुरानी कहानी है महात्मा बुद्ध के समय की, जिसमें जो माँ बाप थे वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ओवर टेकिंग, ओवर केयरिंग थे, ओवर पैम्परिंग, हर चीज में उसको बहुत, और वो एक इन सब बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था। पर उसको भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार था। और उसने एक दिन सुना कि महात्मा बुद्ध अपने शिविर में अपने सन्यासियों को लेकर वहां आए हैं। तो वो सीधा एक दिन इतना चिढ़ जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं घर छोड़कर आया हूं, मुझे भी सन्यासी बनना है और मुझे आपके संघ में ले लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, आ जाओ। तो वो सन्यासी बन जाता है। इधर माँ बाप परेशान होते, बेटा दो दिन से आया नहीं, तीन दिन से आया नहीं। तो माँ कहती है पिताजी को, पति को, कि जाओ उसको ढूंढो, वो कहीं तो होगा। तो पिता बहुत ढूंढते और फिर उसे पता चलता है पिताजी को कि वो तो महात्मा बुद्ध के आश्रम में चला गया है। तो पिताजी वहां आते हैं, बेटे को देखते हैं, तो महात्मा बुद्ध के पास जाते, कहते हैं मुझे भी सन्यासी बनना है, मुझे भी अपने बेटे के साथ रहना है। ये तो नहीं कहते, पर कहते मुझे यहाँ ही आपके साथ रहना है। तो वो पिता वहां पर भर्ती हो जाते हैं। कुछ दिनों, एक दो दिन के बाद वो माँ ढूंढने निकलती है अपने पति को और बेटे को, और फिर वो देखती है कि मेरा पति और मेरा बेटा तो यहाँ पर आ गए, सन्यासी बन गए। वो कहती है कि मुझे भी सन्यासी नहीं बनना है, और वो भी भिक्षुनी बन जाती है। तो अब ये तीनों ही लोग एक साथ रहने लगते हैं, माँ बाप और बेटा। सुबह एक साथ ही योग करते हैं, ध्यान, और फिर एक साथ ही भिक्षा मांगने जाते हैं, और फिर एक साथ ही वापस आते हैं, एक साथ ही भोजन करते हैं, और सब कुछ एक साथ चालू है, जैसे पहले लौकिक में करते थे, अभी सन्यासी बनने के बाद सब कुछ कर रहे हैं। और फिर महात्मा बुद्ध को ये बात पता चलती है, ये क्या हो रहा है, ये तो सारे गृहस्थी स्थापन कर दी यहां पर, ये इस परिवार में भी हो सकता है, लौकिक से तोड़ तो निभानी है। पर हमारे उस दिन मुरली में था, रग कट जाए, खत्म हो जाए, नहीं तो ये मोह हमें फंसा देगा। परसों की मुरली में था, ट्रस्टी बनना है तो ममत्व हटाओ, तो ही ममत्व हटेगा, नहीं तो। ये माँ, ये भाई, ये बहन, ये सब बहुत अच्छे हैं, परंतु हम एक बाप की संतान है, हमारा एक ही है, ये सब में से हमारा कोई भी नहीं है। जब तक ये भाव नहीं तो ये मोह होते रहेगा। और यदि पूरा परिवार ही ज्ञान में चल रहा है तब भी मोह बढ़ जाता है। एक साथ ही योग, एक साथ ही घूमना, एक साथ ही फिरना, ये भी एक बहुत बड़ी माया बन जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अलौकिक में इतना ध्यान ना चले जाए कि लौकिक निग्लेक्ट हो जाए, पर लौकिक में इतना ना फंस जाए कि अलौकिक ही छूट जाए। दूसरी और एक चीज, अलौकिक में इतना ज्यादा ध्यान कि लौकिक की तरफ पूरा, जैसे कि उनको वो मर रहे तो भी उनका ध्यान नहीं, ये भी ना हो। अगर हम एकमात्र है और हम जिम्मेदार है तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, माँ बाप, बहन भाई, जो भी है। और परंतु वो ध्यान रखते रखते हमारी आंतरिक अवस्था डिटैच हो, नहीं तो हम ये देखते हैं कई सारी बहनें आती है, वो कहती है कि हमारा भाई जो है वो अभी दारू पीने लग गया है, पहले ज्ञान में चलता था, बाबा से मिल के गया, और अभी शराब पीता है, अब क्या करे, और बहुत परेशान है बहन जी। हम अपनी तरह से जितनी कोशिश हो सके करें, परंतु उसका अपना भाग्य है, हम किसी के भी भाग्य को यहां नहीं बदल सकते, उसके साथ जो होना है वो होगा, हम क्या कर सकते हैं, दुखी होकर कुछ मिलने वाला है हमको, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम अपने ज्ञान योग के भले दूर से प्रयोग करें, पर कितना भी उनके पास जाए और माथा फोड़े तो वो छोड़ेगा नहीं। हम अपनी शुभ भावनाएं रखेंगे, पर उनकी वजह से हम परेशान ना हो, क्योंकि वो लौकिक भाई है या लौकिक बहन है या और कोई लौकिक है या आर्थिक समस्याएं है। जितना हो सके हम हमसे अपने आप से करें, परंतु डिटैच होकर, नहीं तो वही बंधन बन जाता है। तो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। अगला 11वां बैलेंस, कथनी और करनी। जो हम मुख से बोलते हैं वो हम करके दिखाएं। आज की अव्यक्त वाणी सुबह की, बाबा ने कहा जैसे तुम कहते हो तुम्हारे मुख में गुलाब, वैसे बाप कहते हैं तुम्हारे मुख में, बाबा कौन सा शब्द डालते हैं, अविनाशी भव। तुम्हारे मुख में शब्द डालते हैं अविनाशी भव। तो हमारे मुख से ऐसी ही बातें निकले जिसको हमने सोचा है, समझा है, और सबके सामने यदि कहते हैं और कह दी तो फिर वो करके दिखानी है। ऐसे नहीं कि केवल कहते रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आज से हमारी ये प्रतिज्ञा, आज से वो प्रतिज्ञा है, कितनी सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं। परंतु सारी प्रतिज्ञाएं टूट जाती है। वही प्रतिज्ञाएं करें जो हम कर सके और वो दृढ़ हो, उसमें शक्ति हो, तो कथनी और करनी इसका बैलेंस। बेस्ट है कि जो हम करें वो डायरेक्ट एक्शन हो। बहुत सारी चीजें जो हम दूसरों को कह देते और फिर करते नहीं है, पहले कर दे और फिर कहें कि हमने ये सोचा था और ये हो भी गए, तो इसमें बैलेंस। तो ये हो गए 11 प्रकार के आध्यात्मिक बैलेंस। अब हम आते हैं मानसिक बैलेंस, उसमें दो है। मानसिक बैलेंस में, मेंटल बैलेंस में दो है। पहला, मेंटल बैलेंस में एक तरफ भावना, एक तरफ विवेक। एक तरफ भावना, एक तरफ विवेक। एक तरफ फीलिंग्स है, इमोशंस है, दूसरी तरफ विवेक है। विवेक अर्थात लॉजिक, तर्क, रीजनिंग। लॉजिक ये कहता है, पर विवेक क्या कहता है? दोनों को भी हमको बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि भावनाओं में इतना बह गए कि गलतियां हो गई, और ऐसा भी ना हो कि केवल विवेकवान, केवल विवेक, भावनाओं का जिसमें कोई स्थान नहीं, ऐसा भी ना हो। हमारे व्यक्तित्व में दोनों ही चीजें हो, कहां पर भावना अधिक, कहां पर बैलेंस अधिक, ये ना हो। दोनों का ही बैलेंस, विवेक से भी काम लेना है, बुद्धि से भी काम लेना है। बहुत ज्यादा भावनावान हो जाना, भावनाओं में बह जाना, दुखी होना पड़ेगा। इतिहास में दिखाया है चंद्रगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त चाणक्य से कहता है कि मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे किसी प्रेम हो गया है, उसको धनानंद की जो बेटी दिखाई है धुरधरा, उसी से प्यार हो गया है, अपने शत्रु की बेटी से। तो चंद्रगुप्त चाणक्य से कहता है, मैं क्या करूं, मुझे अजीब सा हो रहा है। चाणक्य कहता है, ये तुमको जो हो रहा है ऐसा मत समझो कि कुछ तो विशिष्ट हो रहा है, ये सिंपल साधारण सा आकर्षण मात्र है और कुछ नहीं है। और अगर तुम इसके प्रभाव अभी नहीं रोको तो इसका प्रभाव तुम्हें नष्ट कर देगा। तो क्या कहता है कि क्या एक स्त्री एक पुरुष मिले, या क्या अप्राकृतिक है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? चंद्रगुप्त चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, ये ठीक है, परंतु साधारण सैनिक के लिए ठीक है। ये स्त्री पुरुष का प्रेम ये उनके लिए ठीक है जो साहूकार है, जो नगरवासी है, पर तुम जिसे अखंड भारत का निर्माण करना है, परंतु तुम जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है, तुम्हारे लिए ये तुम्हारे पतन का कारण होगा। जब तुम्हारी माँ चीख चीख कर पुकार रही है और तुम प्रेम में उलझने की बातें कर रहे हो, तो ये तुम्हारी भूल नहीं, तुम्हारा अपराध होगा। तो जहां चंद्रगुप्त भावनाओं में बहने लगा था, चाणक्य ने उसे तर्क की ओर लाया। तो ये बैलेंस, एक तरफ तर्क, एक तरफ लॉजिक, एक तरफ रीजनिंग और दूसरी तरफ भावनाएं। और ऐसा भी नहीं कि केवल तर्कशील होते रहे और भावनाओं को पूरा ही छोड़ दे, क्योंकि हमने देखा है इस यज्ञ में कितनी भावनाएं वाली माताएं हैं, उनको ज्ञान का कुछ पता नहीं। अगर किसी माता को अचानक पूछ लो, बताओ द्वापर में कितने जन्म है, शायद नहीं बता पाएगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बाबा से प्रीत कम है, उनका प्रेम कम है, अथाह प्रेम है, प्रेम से आंसू बहाती है। हम देखते हैं हमारे पास ओपीडी में माताएं आती है, तो उनके हाथ में डायरी होती है। तो हमने एक माता को पूछा, इस डायरी में क्या लिखा है? तो उस माता ने कहा, इसमें स्वमान है, 1,00,000 बार हो गए मैं महान आत्मा हूं, अभी दूसरा स्वमान चालू है। एक तो हो गई, 1,00,000 बार लिखे स्वमान, दिन भर बस वही। वो कहती, हमने कहा ये क्यों लिखते हो? वो उसने कहा कि नहीं तो बुद्धि यहां वहां भटकती रहती है दिन भर। जहां मैं रहती हूं, लौकिक बेटा बहु वो लोग ज्ञान में नहीं चलते, टीवी चालू रहता है, व्यर्थ की बातें चालू रहती है, तो मैं अपने समान लिखते बैठती हूँ घर में बैठे बैठे। देखो और कितना प्यार है बाबा से। हम ये भी देखते हैं, मधुबन में माताएं आती है, ज्ञान सरोवर में माताएं आती है, तबियत खराब होती है, हम उनको कहते भर्ती हो जाओ, एडमिट हो जाओ, वो कहती है नहीं, हम यहाँ सेवा के लिए आए, अगर भर्ती हो जाए तो बोझ चढ़ेगा सिर पर, बाबा के घर में हमारे सिर पर बोझ चढ़ेगा, जो करना है वैसे ही दे दो दवाई। इतना प्यार, इतना था प्यार। और उनके पास हम देखते गिन के पैसे होते, 125 रुपए जाने की टिकट, बस उतने ही पैसे कॉमन जनरल बुगी में बैठ के जाने के लिए, और कोई इधर उधर खर्चा नहीं करेगी। तो कितना अथाह प्यार है बाप से। तो एक तरफ तो लॉजिक है, एक तरफ भावना है, दोनों भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लॉजिक की तर्कवादी इतने हो जाए कि बाबा के लिए प्यार के आंसू निकलना बंद हो जाए। तो मानसिक में दो है, पहला भावना और तर्क। अगला बैलेंस है बालिक, बालक और मालिक, बालक और मालिक। बाबा ने इसके लिए बहुत बार मुरलियों में कहा है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो अपना ओपिनियन जब देना है तो क्या करो, मालिक बन के ओपिनियन दो, पर सबका जब फाइनल हो जाता है तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लो, छोटा सा बालक बन के। ये केवल मीटिंग की ही बात नहीं, कोई भी संगठन में जब भी हम अपनी आइडिया किसी को देंगे तो अपनी फोर्सफुली आइडिया दे कि ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए। परंतु जब बड़े सीनियर्स या सब लोग मिल के संगठन में जो निर्णय कर ले उसको चुपचाप हम स्वीकार कर ले। जैसे किसी सेंटर पर एक प्रोग्राम है और हम भी उसमें बैठे और हमने कहा कि ये प्रोग्राम जो है ये इस पार्क में होना चाहिए, ये पार्क, ये बगीचे में, पर फिर सबने फाइनल किया नहीं वहां नहीं, किसी ग्राउंड में करेंगे। तो ये नहीं कि हम तो नाराज हो गए, नहीं, हमने तो ये कहा था और तुमको जो करना है करो, हम तो चले, ऐसा नहीं, उसको हम तुरंत स्वीकार कर ले छोटा सा बच्चा बनकर। तो ये है 13, 14 बैलेंस। उसके बाद में फिजिकल में तीन प्रकार के बैलेंस है शारीरिक। सबसे पहला है भोजन, दूसरा है नींद और तीसरा है व्यायाम, एक्सरसाइज। तो ऐसे टोटल 16 प्रकार के बैलेंस है। तो सबसे पहला हमने बताया फिजिकल में नींद। अच्छा अमृत वेला हो इसके लिए अच्छी नींद की आवश्यकता है। जितनी गहरी नींद होगी, अच्छी नींद होगी, उतना अच्छा अमृत वेला होगा। अगर नींद ही रिफ्रेशिंग नहीं है, अगर नींद ही कम आ रही है, तो फिर हमको नींद आएगी अमृत वेला, बहुत नींद आएगी। कोई यहां गिरेगा, कोई वहां गिरेगा, ये सब चालू रहेगा। और ऐसा अमृत वेला कभी भी हमें दिन भर के लिए शक्तिशाली नहीं बनाएगा। तो जो भी हमारा अमृत वेला हो, शक्तिशाली हो, उसके लिए हमें यह देखना है हमारी नींद कितने घंटे है, और वो है कितनी रिफ्रेशिंग, कितनी शक्तिशाली है, या उसमें बहुत डरावने सपने आते हैं, व्यर्थ के सपने आते हैं, तो वो नींद हमें रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशमेंट नहीं देगी। हम देखते हैं मधुबन में कुछ कुछ आत्माएं कितनी पावरफुल योग करती है और कई कई नींद आती रहती है, और कारण होगा कोई ना कोई, शायद नींद नहीं हो रही है, शायद कोई शारीरिक बीमारी है, अपने ब्लड टेस्ट करा ले, या फिर पता ही नहीं करना क्या है अमृत वेला। इसलिए एक बात और कह रहे हैं आप सबको, जिन्होंने भी अमृत वेला की किताब नहीं पढ़ी है वो एक तो अमृत वेला की किताब पढ़ ले, ताकि पता तो चले क्या क्या करना है, क्या क्या समस्या है। छोटी सी किताब अवेलेबल है अमृत वेला। उसके बाद में एक तो नींद, दूसरा बताया भोजन। तो हमारा भोजन भी कंट्रोल डाइट हो, जितना भोजन पर संयम होगा उतना ब्रह्मचर्य और उतना ही योग शक्तिशाली होगा। अगर भोजन असंयमित है तो कभी भी योग हमारा शक्तिशाली नहीं होगा। और फिर तीसरी बात बताई है व्यायाम। एक बार अगर बीमार पड़ गए तो कितने दिन वेस्ट हो जाते हैं, कितना पैसा वेस्ट हो जाता है। एक बार अगर बीमार पड़ गए तो बेड में, हॉस्पिटल में रह के या हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर हम कभी भी योगी जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। बाबा से कनेक्शन तो भले है, परंतु बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारी चीजें करने में एक बार बीमार पड़ गए तो। और बाबा के महावाक्य है, जो आत्माएं अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ती है, बाप दादा उन्हें योगी और ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहते। इसलिए हमारा हर दिनचर्या में एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते कम से कम वॉकिंग, 30 मिनट वॉकिंग सुबह शाम को, और उसी में प्रकृति का सानिध्य, ऐसे स्थानों पर योग बैठ के कहीं जाए कि जहां पर वॉकिंग भी हो जाए और योग भी हो जाए। तो ऐसे ये टोटल 16 प्रकार के बैलेंस है जिसकी हमने चर्चा की। और फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बैलेंस बताया जी, सबसे पहला आध्यात्मिक 11 प्रकार के, आध्यात्मिक 11 प्रकार के, उसके बाद में मानसिक 2 प्रकार के, और उसके बाद में तीसरा बताया था फिजिकल में 3 प्रकार के। तो ऐसे ये अलग अलग प्रकार के बैलेंस है जिसकी हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, और जितने बैलेंस हमारे जीवन में होंगे उतना ही ये जीवन ब्लिसफुल होगा। और हम यहाँ से देख रहे हैं कुलदीप बहन जी वहां आ चुकी है, तो हमारी तरफ से, मधुबन की तरफ से, दादियों की तरफ से और डायरेक्ट परम पिता शिव बाबा की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू, स्वागत इस सभा में, जो आपने हमें भी ये अवसर दिया कि हम इस शांति सरोवर के परिवार से मिल सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आप कुछ बोलेंगे? जी जरूर, थैंक यू। तो फिर से एक बार हम सब की तरफ से, स्पार्क की तरफ से, और जो भी भाई है यहाँ पर, वैभव भाई है, अविनाश भाई है,
सुनील भाई है,
सबकी तरफ से जिन्होंने ये सारा अरेंज किया, सुमलता बहन जो उधर बैठे हैं, सबकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आज के इस गणतंत्र दिवस में, जैसे हमने शुरुआत में कहा, इसमें भारत में घोषणा हुई थी संपूर्ण स्वराज्य की, तो वैसा ही हम संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी स्वयं बने। और अव्यक्त मास चालू है, और इस अव्यक्त मास में अपने पुरुषार्थ को और तीव्र करें और तेजी से आगे बढ़े। और जो बैलेंस की हमने अलग अलग 16 प्रकार के जो बैलेंस की यहाँ चर्चा की, उसको हम अपने जीवन में और ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करें। अच्छा, ओम शांति।